نحمد ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہم 15ویں پارے کے اہم مضامین کا جائزہ لیں گے. 15ویں پارے کے اندر دو سورتیں ہیں، بلکہ ڈیڑھ سورت کہہ لیں، یا ایک سورت پوری ہے بنی اسرائیل، اور پھر سورت کاف کا بھی بڑا حصہ اس کے اندر ہے. تو دونوں صورتیں بڑی عظیم صورتیں ہیں، اور یہ قرآن پاک کے جو ہے وہ حکمت دین کا بیش بہا خزانہ لیے ہیں دونوں صورتیں. اور میری خواہش تھی کہ ہر ایک صورت پہ ہمارے پاس اتنا وقت ہوتا کہ ہر ایک صورت کے بارے میں ہم الگ طور پر ایک آدھا گھنٹہ ہمارے پاس ہوتا، لیکن یہ وقت کی بہرحال کمی ہے. ہم کوشش کریں گے کہ کم از کم اس پارے کے اندر جو حصہ ہے دو صورتوں کا، اس کے چیدہ چیدہ مضامین کو ہم ڈسکس کر سکیں. پہلی سورت بنی اسرائیل ہے. یہ سورت کا معروف نام ہے جو ہمارے ہاں برصغیر پاک و ہند کے اندر جو قرآن پاک ہوتے ہیں ان کے اندر اس کا نام یہی لکھا ہوتا ہے. اس کے دوسرا نام سورہ اسراء بھی ہے، جو عرب علاقوں کے اندر جو کوئی مصحف دیکھتے ہیں ان کے اندر اس کو سورہ اسراء کے نام سے لکھا جاتا ہے، اور اس کو سورہ سبحان بھی کہا جاتا ہے. یہ مکی سورت ہے، اور جیسے پہلے ہم کہتے ہیں کہ نام جو ہے یہ بالکل سمبولک ہے، ظاہر ہے. تو بنی اسرائیل اس لیے کہ اس میں ایک بنی اسرائیل کا ذکر ہے، اور اس میں لفظ آیا ہے تو اس کو اٹھا کے سامنے رکھ دیا گیا، یا پھر اس طرح کہ اس میں اسراء والمعراج کا ذکر ہے، اس لیے اس کا جو ہے سمبولک طور پہ یہ نام موجود ہے. لیکن اس کے اندر بے شمار مضامین دوسرے موجود ہیں. یہ جو واقعہ جو معراج ہے، یہ آپ کو پتہ ہے سن 12 نبوی میں ہوا ہے، اور یہ سورت اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعہ معراج کے بعد، چونکہ اس کا ذکر ہے اس کے اندر، تو یہ اس کے بعد نازل ہوئی ہے. یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری جو دور ہے مکہ کے اندر، اس میں یہ جو ہے. اور جیسے میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ یہ سورت بھی دوسری سورت کی طرح حکمت دین کے بڑے اہم جو اسباق لیے ہوئی ہے. مکہ میں اس کا تھوڑا سا پس منظر جو ہے وہ اگر ذہن میں رہے کہ مکہ میں آپ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و تحریک کی مخالفت اس 12ویں برس میں تو بڑے شدید عروج پہ پہنچ چکی تھی، اور آپ نے پھر سوچا کہ مکہ سے باہر جا کر دعوت دی جائے، تو اس کے لیے اب طائف تشریف لے گئے، اور پھر جو کچھ طائف کے اندر ہوا تو وہ بالکل جو ہے تاریخ ہے، اور ہم سب اس تاریخ سے آگاہ ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی مضطرب دل کے ساتھ اور انتہائی مغموم حالت کے اندر جو ہے واپس مکہ تشریف لائے، اور اس سے پہلے بھی جو حالات تھے وہ بڑے جو ہے کوئی بہت فیوریبل نہیں تھے. اس سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیاوی طور پر جو آپ کے دو بڑے سہارے تھے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، وہ وفات پا چکی تھی، اور اس سے دوسرے جو بڑے سہارے جو موجود تھے آپ کے دنیاوی لحاظ سے، آپ کے چچا ابو طالب، وہ بھی فوت ہو چکے تھے. اور اس جو نامساعد حالات جو ان کا آپ کو سامنا تھا، تو اس میں اس کا اضافہ جو ہے اب یہ ہو گیا کہ آپ کو جو تھوڑی بہت امید تھی کہ آپ شاید جو ہے وہ باہر مکہ سے باہر کے لوگ جو اس کو قبول کر لیں، اور ساتھ بڑا شہر طائف تھا، وہ بھی ایسا نہیں ہو سکا. تو ان بڑے نامساعد حالات کے اندر اللہ تعالیٰ نے آپ کو معراج سے نوازا، اور یہ ایک طرح سے آپ کو اعلان تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو عروج عطا فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ آپ کو طرح نہیں چھوڑے گا، اور اس پیغام اور دعوت کو اسی طرح جو ہے وہ نہیں رہنے دے گا، بلکہ یہ پریویل ہوگا. اور اسی سفر کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج ہوئی، تو آپ کو پتا ہے اس سے پہلے آپ کو یروشلم بیت المقدس لے جایا گیا، اور اس سے پہلے بھی پھر آپ کو وہاں سے مدینہ آپ کو جو ہے وہ دکھایا گیا، مدینہ کا شہر اور کھجوروں کا علاقہ. تو یہ جو ہے اس بات کی علامت تھی کہ آپ یہاں جو ہے وہ تشریف لانے والے ہیں ہجرت کر کے، یہ آپ کا مسکن ہوگا، اور یہ یروشلم بیت المقدس بھی آپ اور آپ کی امت جو ہے اس کو بھی جو ہے فتح کرے گی، اور آپ کے دین کو عروج حاصل ہوگا. تو یہ ایک طرح سے آپ کو جو ہے وہ بشارت بھی اللہ تعالیٰ نے دی، اور آپ اس سفر سے، اس معراج کے سفر سے بے انتہا یقین اور ایمان کی قوت لے کر واپس آئے، اور وہ قوت جو ہر سختی اور ہر مخالفت کے سامنے کھڑا ہونے کے لیے کافی تھی. تو یہ وہ چیز تھی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پہ حاصل ہوئی. اب جو ہے یہ اس بات کا بھی اعلان تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قیادت اور سیادت جن دو لڑیوں میں بٹ گئی تھی، حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل، تو وہ اب دوبارہ ایک ہونے کا وقت آیا ہے. اور جو ایک جو لڑی تھی جو اسحاق علیہ السلام سے بنی اسرائیل جو تھے، ان کو اب دعوت دی گئی ہے کہ اب جو ہے یہ آخری رسول آ گئے ہیں، और अब तुम इन पे ईमान ले आओ तो फिर तुम्हारे लिए भी तुम्हारी जितनी माजी में और तुम्हारी जो हालत तुम पे मुसल्लत है इसके ठीक होने का अब इम्कान है। और यही वो पैगाम है जो तुम्हारे अम्बिया अलैहि सलाम इससे पहले लेके आते रहे, ये भी वही पैगाम लेके आ रहा है। ईमान वालों को जो खास तौर पर अब एक नई उम्मत बनने जा रहे थे सून आफ्टर द इमिग्रेशन और माइग्रेशन टू मदीना, उनकी तरबियत के लिए बहुत कुछ इसके अंदर सामान मौजूद है और बहुत ज्यादा जोर अकीदे तौहीद पे जो है वो दिया गया है इस सूरत के अंदर भी। और तो इसलिए कि तमाम अकायद और तमाम जो सिस्टम और उनकी बुनियाद अगर जो तौहीद अकीदे तौहीद नहीं होगा और अल्लाह ताला की जात नहीं होगी तो फिर ये जो 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 बुनियाद और असास है ये बड़ी कमजोर होगी। इसीलिए बुनियादी और असासी तस्वुरात पे इस सूरत के अंदर बहुत ज्यादा जोर है। मुखालफीन जो थे कुरैश, यकीन कुरैश मक्का जो थे उनके लिए लेजा बड़ा सख्त है इसके अंदर, चूंकि ये बिल्कुल आखिरी दौर की जो सूरत है और उनको वार्निंग भी दी गई है, लेकिन वार्निंग के साथ साथ उनके लिए उनको दावत और उनको तफहीम और तालीम का जो है वो कभी भी दामन इसका नहीं छोड़ा गया। साथ साथ उनको ये भी बताया गया है कि तुम्हारे लिए अभी मौका है, ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी तुम्हारे दरम्यान में मौजूद है और तुम इसको जो है वो कबूल कर लो। जेन साजी की गई है मुसलमानों की अखलाक और तमद्दन के बड़े बड़े नुमाया असूल यहाँ इस सूरत ने बयान कर दिए है। और वजह उनकी ये थी कि अभी मुसलमान हिजरत करके वापस हिजरत करके मदीना जाने वाले थे और जिसकी वहां पे एक इस्लामी इज्तिमाईयत की बुनियाद रखी जाने वाली थी, तो उनकी जेन साजी पहले से कर दी गई कि जेनी तौर पर ये तैयार हो जाए कि वहां पे जो सेटअप होगा, वहां पे जो हिदायत होंगी, वहां की इज्तिमाईयत की जो है वो रिक्वायरमेंट दूसरी होंगी, उनके लिए तुम्हें जहन जो है वो जहन तैयार करना चाहिए। इसीलिए मुसलमानों को बहुत ज्यादा यहाँ पे हिदायत भी इस सूरत के अंदर भी दी गई। और अजीब बात है कि इसी तैयारी के सिलसिले में बनी इसराइल के कोई खास मोहतद बेहसा है जो है मक्का के अंदर मौजूद न था, लेकिन बनी इसराइल को यहाँ पे खिताब किया गया है। वो पता है कि बनी इसराइल की तारीख से शुरू के अंदर ही कि ये दो बनी इसराइल ने दो जो है अल्लाह ताला ने इनके इनके लिखा था कि ये दो बड़े फसाद बर्पा करेंगे और अल्लाह ताला इनको जो है वो पनिश करेगा, इसे इनको सजा देगा। तो वो उन कुरैश मक्का को एक तो जो है इस जो बनी इसराइल की तारीख से उसे इबरत हासिल करने का कहा गया और फिर बनी इसराइल को भी खिताब किया गया कि तुम पर अल्लाह ताला ने जो तब से एक जिल्लत मुसल्लत कर दी है, अगर उसको तुम दूर करना चाहते हो तो इस नबी बरहक पर ईमान ले आओ, और फिर वरना ऐसा होगा कि फिर अल्लाह ताला का जो कानूनी मकाफात अमल है वो हरकत में आएगा और फिर जो है तुम्हारे ऊपर ये जिल्लत मजीद जो है वो गहरी होती जाए। फरमा व इन उदना उदकुम व इन उद तुम उदना, अगर तुम ये जारी रखोगे तो फिर हम इस सजा के अंदर इसको जो है ये भी सजा भी तुम्हारी जिल्लत और मस्किनत जो तुम्हारे ऊपर तारी की गई इसको भी अल्लाह ताला जारी रखेगा। 10 मुख्तलिफ आयात के अंदर इस सूरत के अंदर मुख्तलिफ मकामात पे मुख्तलिफ आयात के अंदर कुरान की खसूसियात और उसकी फजीलतें बयान की गई हैं। तो जाहिर तौर पर ये जो है बहुत सारे जो मुशरिकीन मक्का इतराज करते थे उस पे भी इनके जवाब दिया गया है और कुरान की हकानियत को और खुसूसियत और फजीलियत को वाजे किया गया है। एक बात और बड़ी बताई गई है कि कुरैश मक्का आपको मक्का से बेदखल करना चाहते हैं और जो है इसके लिए जो है वो साजिशें कर रहे हैं, इसके लिए प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन बड़े वाजे अल्फाज में बताया गया है और कुरान की ये पेशन गोई है। और कुरान ने इरशाद फरमाया यहाँ पे कि अगर तुमने ऐसा किया कि तुमने इस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस जमीन से बेदखल किया तो तुम खुद भी इस जमीन पर ज्यादा देर न टिक सकोगे। और ये ऐसी पेशन गोई थी जो बिल्कुल 8 और 9 साल के बाद फतह मक्का की सूरत के अंदर बिल्कुल दुनिया के सामने आ गई और ये अल्लाह ताला का कौल जो है वो पूरा होके रहा। इस्लामी मुआशरे और इस्लामी रियासत के बुनियादी उसूल बताए गए हैं और इस्लामी जिंदगी के आदाबो अखलाक पर मुश्तमिल 13 औसाफ हैं जिनका जो है यहाँ पे जिक्र किया गया है, 13 हिदायात हैं जिनका जिक्र किया गया है, जिनमें दोनों शामिल है हुकूकुल्ला भी और हुकूकुल्लबाद भी शामिल है। इनमें फिर अकीदा भी है और इबादात भी हैं और अखलाक भी हैं और मामलात भी हैं। और इस वजह से क्या मुसलमानों को अब मुसलमान उस तरफ जा रहे हैं सून आफ्टर दी माइग्रेशन, उनको जो है इस्लामी इज्तमाइयत कायम करनी है तो उस निज़ाम की बुनियादें जो है वो जनरल गुड जो है और जो तमाम उम्मतों के अंदर और तमाम कौमों के अंदर जो मुश्तरक रहा है, जो अच्छाई और जो हक और जो अखलाक वो उसकी जो तालीम दी गई, और उसमें महज अल्लाह ताला की इबादत करना, वालदैन के साथ नेकी और भलाई करना, रिश्तेदारों, मुसाफरों और मसाकीन का हक देना, फजूल खर्ची और बुखल से बचना, औलाद का ना कत्ले नहाक, औलाद को मुफलिसी के डर से कत्ल ना करना, और किसी भी इंसान का कत्ले नहाक ना करना, यतीम के माल में नाहक तसरुफ ना करना, इफाए अहद यानी अहद को पूरा करना, नाप तोल पूरे करने, और जिस चीज का इल्म ना हो उसके पीछे ना पड़ना, और जमीन में अकड़ कर ना चलना, ये जो है बताए गए हैं। और इसी के मिसल, इन्हीं अहकाम के मिसल तौरात के अंदर भी ये अकाम अशरा के तो के नाम से इसी तरह के ये अखलाकी उसूल वहां पे भी मौजूद है। फिर इबलीस का चैलेंज है कि औलाद आदम को कहता है इबलीस का अल्लाह ताला से मुकालमा है कि तू मुझे जो है वो मोहलत दे, तो अल्लाह ताला ने उसे मोहलत दी, और वो कहता है कि वो औलाद आदम को हमेशा भटकाता रहेगा। तो उसका जवाब जो है, जो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है, वो इंसानों के लिए, हमारे लिए उसमें जो है वो एक सबक है कि किस तरीके से हम शैतान के फंदों से और उसके भटकाने से और उसके वसवास से, उसके विस्फर से बच सकते हैं। तो वो ये है कि अल्लाह ताला के खालिस बंदे बनकर हम उसे बच सकते हैं। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, इन्ना इबादी लैस लका अलैहिम सुल्तान, मेरे बंदों के ऊपर तेरा कोई जो है, जो मेरे बंदे होंगे, हकीकी मेरे बंदे होंगे, मेरी इताअत करेंगे और मेरी इबादत करेंगे और मुझसे लो लगाएंगे, मुझसे ताल्लुक रखेंगे, उन पर तेरा कुछ बस न चल सकेगा। अल्लाह ताला हमें उन लोगों में शामिल फरमाए जिनके ऊपर शैतान का बस नहीं चल सकेगा, और अल्लाह ताला हमें अपने खालस बंदा बनाकर अपने मुती और फरमाबरदार बनाए। आमीन। फिर उस बात किस्मत शायद का जिक्र है जो दुनिया में अल्लाह ताला के पैगाम से यानी कुरान से अंधा बना रहा है। दुनिया के अंदर अंधा बनने का मतलब ये नहीं है कि उसने आंखें बंद कर ली हैं, ये एक मुहावरा भी है, और ये इसका ये मतलब भी है कि वो बिल्कुल इनडिफरेंट बना रहा है, कुरान से उसकी जिंदगी में कोई खास ताल्लुक नहीं रहा है, कि कुरान भाई है सो है, नहीं है सो नहीं है, बस जो है ठीक है, देयर इज जस्ट वन मोर थिंग इन लाइफ, और कुरान के अंदर झांक कर नहीं देखा कुरान क्या मुझसे मुतालबा करता है, और कुरान किस चीज का हुक्म देता है और किन चीजों से रोकता है, ये कुरान से अंधा बनना रहना है। तो उसके बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया कि आखिरत में भी वो अंधा ही उठाया जाएगा। कुरान के जो नबी अकरम सल्लम से मौजों की जो 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 फरमाइश होती थी और तलब, उसके जवाब में फरमाया कि ये कुरान एक मौजा है, और इसके मिसल अगर तुम समझते हो कि ये इसका अपना कलाम है नबी का, या ये जो है वो हक नहीं है, तो तुम इसके मिसल फिर कलाम बना के ले आओ। तो ये उनकी तमाम जो बड़ी उनकी जिसको गर्रा था, जिनको अपनी अहल जबानी का, अहल जबान होने का और जबान का, और दूसरी दूसरी जो कौमों को वो गूंगा कहते थे, अजम कहते थे, तो उनको ये बहुत बड़ा चैलेंज था, उनका सबसे बड़ा चैलेंज उनके लिए यही था कि कुरान ने बार बार उनको ये चैलेंज दिया है। और ये भी अल्लाह ने फरमाया कि ये कुरान मोमिनीन के लिए शिफा है। कुरैशी क़यादत के रवैयों पर जो है फरमाया कि ये इनके रवैये बिल्कुल फिरौन जैसे हैं, जैसे वो मूसा अलैहिस्सलाम को अपनी कौम के अंदर से हटाना और बाहर करना चाहता था, ये भी ऐसा चाहते हैं। तो फरमाया कि ऐसा ना हो, तुम ऐसा चाहते हो तो तुम्हारा अंजाम भी वैसा हो सकता है। इस सूरत में फिर इसका खुलासा ये है कि सूरत में मेराज का पस मंजर, पेश मंजर, मेराज के असरार हुक्म, बनी इसराइल की तारीख से इबरत, उम्मत मुसलमा की असासी जो हिकमतें हैं, इस्लामी सोसाइटी की तामीर के लिए बुनियादी अहकाम, इस्लामी रियासत के इस्तेकाम के लिए जरूरी हिदायत, अखलाकियात का एक पूरा दस्तूरुल अमल इसके अंदर, और इनफरादी और इज्तिमाई जिंदगी के लिए बुनियादी और असासी जरूरियात के लिए जरूरी हिदायत अल्लाह ताला ने इस सूरत के अंदर इरशाद फरमाई है, जो हिकमत का बहुत बड़ा एक खजाना है। इसके बाद सूरह काफ है, ये इससे पहले पांच नबी के अंदर, और इसका एक जोड़ा है मजामीन के एतबार से, इसके अंदर बहुत मुमासले थे दोनों सूरतों में, ये सूरत और सूरह बनी इसराइल के अंदर। तो इस जो है पांच नबी के अंदर ये उतरी है, और ये हजरत, आपको पता है कि पांच नबी में अहम वाकया हजरत हबशा है, ये उससे पहले उतरी है जब मुसलमान जुल्म सितम के शिकार थे, और मुसलमानों को जाहिर अभी बहुत ज्यादा तरबियत भी नहीं थी, और इसलिए ये मुसलमानों की तरबियत का मुसलमानों के लिए बहुत सामान लिए हुई है, और तौहीद की आजमाइश में कुरैश उनके जालिम सरदारों यानी मुसलमानों को बताया गया कि ये तुम्हारी जो आजमाइश हो रही है, जिस तरीके तुम्हारी परसिक्यूशन हो रही है, और जिस तरीके से कुरैश उनके जालिम सरदार और फिर मुशरिक वालदैन जिस तरीके से तुम्हें दबाव में ला रहे हैं कि वापस चले जाओ, کفر کی حالت میں, تو مسلمانوں کو کہا گیا کہ تم ان کے دباؤ میں نہ آؤ اور یہ اپنی ایمان کو سلامت رکھو. احادیث مبارکہ کے اندر اس صورت کے بارے میں سب سے زیادہ 6 مستند صحیح احادیث مروی ہیں, اور ان کا خلاصہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو شخص اس صورت کو پڑھے گا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے اس کے لیے نور مقرر فرما دے گا ایک جمعے سے دوسرے جمعے کے درمیان میں. اور آپ کو پتا ہے کہ نور کی یہ صلاحیت خصوصیت یہ ہے کہ وہ آپ کو راستہ دکھاتا ہے, آپ کا راستہ واضح کرتا ہے. تو جو لوگ یہ صورت پڑھیں گے تو وہ پھر ان کی زندگی کا راستہ, وہ بالکل اللہ تعالیٰ کی صاف واضح ہدایت کی روشنی کے اندر اپنے اس راستے کو دیکھ سکیں گے, زندگی کو ان کے لیے جو ہے رہنمائی کا یہ مہیا کرے گا. اور دوسری حدیث میں جو جس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ جو آخر زمان میں جو فتنہ دجال سب سے بڑا فتنہ نمودار ہوگا, اس سے بھی یہ مسلمانوں کو اس کا اپنے پڑھنے والوں کو اس سے یہ پروٹیکشن اور کمیونٹی جو ہے میسر کرے گا. تو یہ بہت بڑی جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک حدیث, یہ صحیح حدیث مبارکہ ہے, بہت ساری ہیں جیسے 6 ہیں میں نے کہا ہے, اور یہ کم و بیش یہی دو جو ہے 6 حدیث انہی جو ہے موضوع انہی سے متعلق ہیں, دو چیزوں سے متعلق ہیں. تو یقینی طور پر پھر جب آپ نے فرمایا تو اس صورت کے اندر پھر کچھ ایسا چیز موجود ہے, کوئی ایسی چیز موجود ہے جو آخر زمان جب یہ قیامت برپا ہوگی, اس سے پہلے کے جتنے بڑے بڑے فتنے رونما ہوں گے جن کو دور فتن کہا گیا ہے, تو ان فتنوں میں یہ صورت ایک پروٹیکشن اور امیونٹی فراہم کرے گی. تو اس کے اندر کچھ ایسی چیز موجود ہے اس کے سبسٹانس کے اندر, اس کے مندرجات کے اندر, کہ وہ جو چیز جو ہے اللہ تعالی کی طرف سے ہے, اللہ نے رکھی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خبر دی ہے, اور وہ اپنے پڑھنے والوں کے لیے, اور وہ لوگ جو اس کو شعوری طور پر اور بالکل سمجھ کے اور فہم اس کا حاصل کر کے اس کو جو ہے اس کی تلاوت کریں گے, اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے ان فتنوں سے محفوظ رکھے گا. تو اس صورت میں جو ہے دو نظریوں کی بات کی گئی ہے. ایک نظریہ جو ہے, دو متضاد نظریے ہیں, یہ دو متضاد عقیدے ہیں اور دو متضاد قسم کی نفسیات کی کہانی ہے یہ صورت. ایک نظریہ جو ہے وہ مادیت کا ہے, مٹیریلزم کا ہے, اور مادی چیزوں پہ عقیدہ ہے, یعنی مادیت اور مادیت کے جتنے بائی پروڈکٹس ہیں ان کے اوپر بلیو کرنا, ان کے اوپر زندگی کا چلن اور زندگی کی نہج کو ان کے اوپر استوار کرنا, اور یہ جو ہے نظریہ حیات ہے ایک. اور دوسرا نظریہ جو ہے وہ ایمان کا نظریہ ہے, اس میں ایمان باللہ بھی شامل ہے اور ایمان بالغیب بھی شامل ہے, اور پھر اس ایمان کے نتیجے میں پیدا ہونے والے جتنے اعمال ہیں اور اخلاق ہیں اور نتائج ہیں اور کردار ہے وہ شامل ہے پھر. تو یہ دو متضاد جو ہے نظریے ہیں, لیکن یہ صورت جو ہے ہمیں پہلے نظریے یعنی مادیت اور مادیت کی بائی پروڈکٹس اور ان کو اختیار کرنے اور اس کے خلاف آگاہی جو ہے یہ صورت دیتی ہے. اب اس صورت کے 4 قصے ہیں, آپ کو سب کو پتا ہے, اور ظاہر ہے ہم قصوں کی تفصیل میں نہیں جائیں گے, بظاہر وہ سارے قصے مختلف ہیں, لیکن دراصل آپ دیکھیں تو سارے قصوں کے نتائج نتائج کے اعتبار سے جڑے ہوئے ہیں بالکل, کہ ان کا نتیجہ بے شک نتائج قصے مختلف ہیں, ان کے اندر بظاہر کوئی واسطہ بھی نظر نہیں آتا, لیکن جب آپ نتیجہ اخذ کریں گے اس کو بالآخر جو آخری جو بات ہوگی وہ جو ہے نتیجہ اس کا ایک ہی ہوگا. اس صورت کا موضوع کیا ہے؟ صورت کا موضوع جو ہے اگر 4 قصوں کو انالائز کریں تو یہ لگتا ہے کہ صورت کا موضوع ایمان اور مادیت کی کشمکش ہے, اور سورت کے تمام واقعات اور تمام حکایات اور اشارات اور تماثیل اور جتنی موعظہ اور حسنات جتنی بھی جو ہے وہ نصیحتیں, وہ ساری بالواسطہ طور پر یا بلا واسطہ طور پر انہی معنی کی طرف جو اشارہ کرتی ہیں. اور جیسے جو ہے میں نے پہلے کہا کہ آخر زمان کے فتنے میں جو ہے وہ سب سے یہ صورت پروٹیکشن ہوگی, تو ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کی روشنی کے اندر معلوم ہوتا ہے کہ عہد آخر کے جتنے فتنے ہوں گے ان میں سے سب سے بڑا فتنہ دجال کا فتنہ ہوگا, اور یہ صورت اپنے پڑھنے والوں کو اس عظیم فتنے سے محفوظ رکھے گی. اب یہ جو دجال ہے, یہ دجل ہے, یہ کیا ہے؟ اصل میں دجل کا معنی ہے دھوکا اور فریب کھانا, اور جو ہے جو کسی کو مطلب اسے دھوکہ دینا, کسی دھوکے میں آ جانا, دھوکا کھانا, تو یہ ہے. تو دنیا کا سب سے بڑا دھوکا جو ہے وہ یہ ہے कि इंसान दुनिया की मालो मता के अंदर, उसके असबाब के अंदर, उसकी जीनत असबाब, जीनत जेबाइश के अंदर, ये सारे अल्फाज को इसी कुरान की सूरत के अंदर मौजूद हैं। ये मालो मता और उसके असबाब और जराए और उसकी जीनत और जेबाइश, ये सारे बार बार इसका जिक्र किया गया। इनके अंदर खो जाना और फिर जो ईमान से बेबहरा हो जाना, ये सबसे बड़ा अजीम तर फितना है। अच्छा, ये दज्जाल के फितने से किस तरह बड़ी, ये दज्जाल का फितना सबसे बड़ी आजमाइश किस तरह होगा? कि देखिए, दज्जाल का फितना जो होगा, या जो जो इस सूरत के जो मौजू से मुतल्लिक भी है, वो ये है कि दज्जाल मादियत का एक एम्बॉडीमेंट है। ये जो मादियत है, मटीरियलिज्म है, ये सरापा जो है दज्जाल के फितने के अंदर जो है मौजूद होगी। ये टेक्नोलॉजी और मुहैयरुल अकल पेशरफ जो जो इसमें हो रही है टेक्नोलॉजी और साइंस के अंदर, और इनको दज्जालियत और दज्जाल के जो जो अलंबरदार हैं, इसको जाहिर अपने फेवर के अंदर इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। हत्ता कि ये मौत और जिंदगी पे इख्तियार की बात तक चला जाएगा, और ये जो जो दज्जाल के फितने का सबसे बड़ा अलंबरदार खुद दज्जाल आजम होगा, वो मौत और जिंदगी पे अख्तियार जो है वो रखेगा। अब अंदाजा कर सकते हैं कि लोगों की और कमजोर ईमान वालों की इससे बड़ी आजमाइश क्या हो सकती है, कि वो लोग कहेंगे उसको, लोगों को कहेगा कि मुझ पे ईमान लाओ, मैं खुदा हूं। तो लोग कहेंगे कि तू खुदा नहीं हो सकता, तो कहेगा कि क्यों कर, तो कहे लोग कहेंगे कि ये खुदा तो वो है जो जिंदगी और मौत देता है, तो कहेगा कि लाओ बताओ क्या मैं किसको मौत दूं, और ये मौत इंसानों को दे देगा, और फिर कहेगा कि तुम जो है मैं जिंदा करके देखो तुम्हारे माँ बाप को, तो वो अपने शयातीन जिन्न जो उसके चेले होंगे उनको जो है कहेगा, और वो जो है उसके माँ बाप की सूरत के अंदर अब नमूदार हो जाएंगे, और कमजोर ईमान वाले उस पर ईमान लाएंगे। ये मौत और जिंदगी पे इख्तियार की बात होगी, और ये हवाओं पे और पानियों पे और बादलों पे और ये सब चीज जमीन के जो है कम्युनिकेशन पे और हर चीज के ऊपर उसका जो है अख्तियार होगा। तो ये इतना बड़ा है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि इंसान को जितने बड़ी आजमाइशें और फितने का सामना रहा है, उनमें सबसे बड़ा फितना दज्जाल का फितना होगा, और कोई पैगंबर ऐसा नहीं गुजरा जिसने अपनी उम्मत को इस अजीम फितनों से खबरदार न किया हो। तो ये देखें कि फिर किस तरीके से ये बहुत मुसलमान और ईमान वाले इस इब्तला में, आजमाइश में मुबतला होंगे। तो ये सूरत जो है अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया नबी अकरम सल्लम ने कि हर दौर में दज्जाल, दज्जाली फितनों और दज्जाली निजाम जहां जहां पे मौजूद है, और उसकी जो जो शाखें हैं और उसके जो बाई प्रोडक्ट्स हैं, उसको नामजद कर सकेगी ये सूरत, और उससे इम्यूनिटी भी प्रोवाइड करेगी। ये दज्जाली निजाम क्या है, आज उसके मजाहिर और नुमाइंदे कौन है, ये दज्जाल आजम की राह किस तरह हमवार कर रहे हैं, ये भी अगर चीज इस मजमून का जो हिस्सा है, लेकिन जाहिर है वक्त की कमी से हम इसको अभी इस वक्त जो है कवर नहीं कर सकते। अब अगर हम किस्सों पे नजर डालें, तो पहला किस्सा असाबे काफ का है। मुट्ठी भर नौजवान है और हर ताकत से महरूम है, और कुव्वत से और हथियारों से और कोई चीज भी नहीं है, और अपने ईमान को बचाने के लिए हर चीज अपने छोड़ देते हैं, और फिर अल्लाह ताला ने उनको जो है किस तरीके से जो है वो जालिमों से निजात दी, उनके जुल्म इस्तबदाद से निजात दी। तो ये इसके अंदर इस्पाक है कि अल्लाह ताला के हाथ में कुव्वत और इक्तदार है, वो हर चीज पे कादिर है, और वो जुल्मत के अंधेरों से जो है वो नूर जाहिर फरमाता है। और ये जो है अहले मक्का के, जो मक्का के अहले ईमान लोग थे, उनके लिए जो है उसमें बहुत असबाक मौजूद हैं कि उनकी बड़ी कदर मुश्तरक थी असाबे काफ से। अल्लाह ताला उनको बताया गया कि अल्लाह ताला किस तरह मजबूर और मजबूर इंसान अल ईमान की गैर से मदद फरमाता है, लेकिन इसके ऊपर जो है ये इस ईमान के ऊपर सब्र और इस्तिकामत शर्त है। वतन और माल और औलाद और माँ बाप और घर बार अगर सब कुछ छोड़ना पड़े तो छोड़ दिया जाए, लेकिन ईमान को बचा लिया जाए, ये इसका सबक है। मुसलमानों के लिए इसके अंदर बेशुमार असबाक मौजूद है और नसाए मौजूद हैं, और उस वक्त मक्का के लोगों को भी दिए गए, और बाद के मुसलमानों के लिए हमेशा के लिए ये असबाक और नसाए मौजूद हैं। दावत बताया गया कि दावत के रास्ते के अंदर ये सारे मराहल आएंगे, जिनसे असाबे काफ गुजरे, जिनसे असाबे खुदूद गुजरे, कि 20,000 अफराद को आग के अंदर, गढ़ों के अंदर फेंक दिया गया, जिससे मूसा और हारून गुजरे, या फिर अब तो मक्का के अंदर जिन हालात से गुजर चुके हो, ये कोई पिक्यूलियर नहीं है। ये अगर इस रास्ते पे ईमान और दावत के रास्ते पे चल रहे हो, तो ये बहरहाल इसके संगे मील है, ये चले आएंगे। अल्लाह पर भरोसा तमाम कुव्वतों का सरचश्मा है। तमाम लोगों ने जो प्रिवेल्ड और आखिर के अंदर जो कामयाब और कामरान ठहरे, उन सब ने अल्लाह ताला पे भरोसा किया, और ईमान बिल आखिर मादियत के ऊपर जो है वो गालिब आ जाता है। ये जो है देखें इस किस्से का जो है वो एक था। वो आप कह लें कि सबक था। अब दूसरा जो जो किस्सा जो है वो आपको पता है कि अहले दो बाग वालों का किस्सा है, और बाग वाले जो है वो दो ऐसे शख्स हैं जो बड़े, एक में से एक बड़ा खुश नसीब है और इकबाल मंद शख्स का किस्सा है। उसको जरूरत जिंदगी की हर शख्स जो है उसको मुयस्सर है, लेकिन उसका मिजाज जो है वो मादी है। वो कहता है, दूसरे को कहता है कि ना अक्सर मैं उनको मालूम वाजो नफरा, मैं तुमसे ज्यादा हूं माल में और जो है हर चीज में जो अल्लाह ताला ने मुझे इज्जत दी है, मैं तुमसे ज्यादा हूं। और यही जो किस्म का मिजाज है जागीरदारों और दौलतमंदों का जो है ये खासा है, अपनी सारी खुशबख्ती और सारी खुशहाली को अपने इल्म और लियाकत और जहानत का समरा जो है समझते हैं। और उस शख्स ने भी कहा, और इससे पहले ये बात जो है कुरान ने ये है कि कारून के बारे में फरमाया, इन्नमा उतीतुहु अला इल्म इंदी, ये तो सब जो मेरा है, ये जो मैंने एम्पायर खड़ी की है, ये जो मैंने जो है मेरे रेंचेज और मेरे बागात और मेरे प्रोड्यूस जो है बड़े हो रही है, ये तो मेरे अपने, मैंने इसको प्लान किया है, मैंने इसके लिए बड़ी जो है वो प्लानिंग की और इस पर बड़ी इन्वेस्टमेंट की है। तो ये जो है ईमानी तर्ज फिक्र नहीं है, ये जो बताया गया है ईमानी तर्ज फिक्र जो है वो इसके बिल्कुल जो बरक्स चीज है वो ये है कि हर कमाल को और हर अचीवमेंट को और हर असासे को, हर कामयाबी को अल्लाह ताला की तरफ मंसूब करें, उसी पे भरोसा करें। और इसमें यह भी बताया कि लोग इंशाअल्लाह और माशाअल्लाह का शौरी इस्तेमाल करें, कि ये चीजें सारी की सारी अल्लाह ताला की तरफ से आती हैं। अगर अल्लाह ताला चाहेगा तो ऐसा होगा, चाहेगा तो ऐसा ना होगा। मादी तहजीब का अपने वसायल और असबाब पे भरोसा, इसको कुरान ने यहाँ पे इस सूरत के अंदर इसी पैसेज के अंदर शिर्क करार दिया है कि ये कोई ये कहे कि ये सारी चीजें जो है ये तभी होंगी और जो है ये जब होंगी तो मैं जो है इसके ऊपर जो है मेरा भरोसा इन्हीं चीजों के ऊपर है और अल्लाह ताला को उसमें से मिन्हा कर दे, तो इसी को कुरान ने शिर्क कहा है। और जब बाग वाले का बाग तबाह हो गया तो फिर उसने बड़ा अफसोस मरते हुए कहा कि या लैतनी लम उशरिक रब्बी अहदा, काश मैं अपने रब के साथ शिरक न करता और ये ख्यालात न रखता। इन्हीं ख्यालात को रखने की वजह से कि ये मैं हूं और ये मेरा माल है और मैं लोगों को, गरीबों को क्यों दूं, तो ये जो है वो सारी चीज जो है उस पर बड़े काफी अफसोस मलता रह गया और कहता रह गया कि काश मैं अपने रब के साथ न करता और ये शिरकी कलमात न कहता जिंदगी के अंदर। और ये ख्याल करना कि सारी दौलत और खुशहाली का चश्मा यही जाहिरी असबाब है, यही शिरकी जो है वो किस्म है। तो फिर जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके साथियों को और आप कुरान पढ़ने वालों को तरगीब दी गई है कि अपना सारा मामला, अपनी सारी ताकत, अपनी सारी सलाहियत अल्लाह ताला के हवाले कर दें और मुस्तकबिल के हवाले से हर इरादा और हर नीयत को उसके सुपुर्द करें और उसकी उसकी मशीयत के साथ वाबस्ता मशरूत करें, इंशाअल्लाह कहें, और कहें कि ये अल्लाह ताला चाहेगा तो ऐसा होगा और अल्लाह चाहेगा तो ऐसा नहीं। ये दरअसल दो बड़े हल्के फुल्के लफ्ज हैं लेकिन दरहकीकत बड़े वजनी हैं और बड़े गहरे हैं और मानी हकायक से लबरेज हैं ये अल्फाज दोनों। अगर शऊर के साथ अदा किए जाएं तो ये दो लफ्ज जो हैं ये अंधी मादियत जो है, मटीरियलिज्म जो है, ये इंसान नफ्स और इरादे नफसानी पर इंसान का जो भरोसा है उस पर बड़ी कारी जरब लगाते हैं। इन अल्फाज को अगरचे हमने मजाक बना के अगरचे अपनी जिंदगी के अंदर रख दिया है लेकिन आप देखेंगे ये अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर इनका हुक्म किस अंदाज से दिया है, यानी ये मामूली बात नहीं है। यह जिस तरीके से इंशाअल्लाह का इस्तेमाल और उसका गलत इस्तेमाल जो है राइज हो गया है, ये बिल्कुल कुरान के उससे जो है वो हमने इसको जिंदगी के छोटे छोटे इनफरादी कामों तक महदूद कर दिया, सरसरी मुलाकातों तक महदूद कर लिया, तारीख के तयन के लिए, हालांकि इज्तिमाई कामों और नजीम मनसूबों पर इसको हावी होना चाहिए और इसकी रिफ्लेक्शन कौम के जितने बड़े बड़े मनसूबे उनके अंदर होनी चाहिए, वसायल और इसबाब और तदाबीर, और इस यकीन और ईमान के साथ हूं कि फैसला कौन और बालातर और अव्वल और आखिर जो सूरत है बहरहाल वो अल्लाह ताला के इरादे की है। और इसके मुखातिब हर जमाने का मुआशरा, तमाम हुकूमतें, तमाम इदारे और तमाम जमातें और तमाम तहरीकें, तमाम लोग जो हैं। अब ऐद हाजिर का शिर्क ये है कि हमने मादी इसबाब को और तबी इसबाब को और फनी इसबाब को और उसके पीछे जो चीज जितनी भी जो कॉजेज हैं जो है और इफेक्ट्स हैं उनको खुदा का दर्जा दे दिया है। जिंदगी और मौत और कामयाबी और नाकामी और खुश नसीबी के इसबाब बस यही इसबाब जराए हैं जो नजर आते हैं। इस वाक्य में इस मादा प्रस्ताना तर्ज फिक्र की भरपूर तरदीद की गई है और इस तरीके से आप देखेंगे दोनों वाक्य जो इस पारे के अंदर, इस सूरत के अंदर, इस हिस्से में जो मजकूर है उसमें इन दोनों की जो है इस मादा प्रस्ताना तर्ज फिक्र की नफी की गई है। और बताया गया है कि अल्लाह ताला के ऊपर भरोसा, अल्लाह ताला के ऊपर ईमान, ये सबसे अहम चीज है जो इंसान को जो है वो फायदा दे सकती है। और इनका जो है इंशाल्लाह बाकी इसके दो जो किस्से हैं वो जो अगली पारे के अंदर मुश्तमिल है तो वहां पे इसका तज़किरा करेंगे और फिर एक फिर बार एक जायजा लेंगे। लेकिन आप देख रहे हैं कि किस तरीके से अल्लाह ताला ने लोगों को एक ज़हनियत से हटाकर दूसरी ज़हन साजी के लिए जो है तैयार किया है। और ये बार बार रेपिटेशन है सूरत की, बार बार हर जुमे को और शऊर के साथ और मानी के साथ और गौर फिक्र और इसके ऊपर जो है तफहीम के साथ ये इंसान के अंदर पेवस्त हो जाती है बार बार की रेपिटेशन। और इससे इंसान का एक किरदार डेवलप होता है और इसका इंसान से एक नजरिया डेवलप होता है और इंसान का एक जो है नुक्ते नजर, और वो इंसान को उस रास्ते पे चलने में मददगार होता है। यूं इस तरीके से ये सूरत जो जमाने आखिर के जो फितने होंगे उससे ये इंशाल्लाह ताला जैसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साथ फरमाया कि सूरत इम्यूनिटी प्रोवाइड जो है वो मुयस्सर करेगी। हम बाकी सूरत इस सूरत का बाकी हिस्सा इंशाल्लाह और दो जो किस्से हैं वो अगले पारे के अंदर इसका जायजा लेंगे। वा आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जज़ाकुमुल्लाह खैरा।